व्यवस्था विवरण अध्याय 8। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। व्यवस्था विवरण 8:1-2 पद। कौन जान ले? परमेश्वर नहीं, इसराइल खुद ये जान ले। तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेता है कि वो जाने कि हमारे मन में क्या है, वो तो जानता ही है, परंतु हमें अपनी वास्तविक अवस्था का बोध कराने के लिए। हम अपने आप को अधिक बलवंत मानते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षा में पड़ने देता है कि हम जान ले कि हमें उस पर निर्भर रहना है। हम अपने आप पर निर्भर रहकर खड़े नहीं रह पाएंगे। परीक्षाओं का उद्देश्य यही है कि हमारा विश्वास इस शरीर की अपेक्षा जीवित परमेश्वर पर हो। इसी प्रकार परमेश्वर उन्हें 40 वर्ष जंगल से लेकर चला कि वे जान पाए कि उनमें परमेश्वर की आज्ञा पालन का सामर्थ है या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वो जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:3। यही पद मसीह यीशु ने शैतान के लिए दोहराया था जब शैतान ने उससे कहा था, तुझे भूख लगी है तो पत्थरों को आज्ञा दे कि वे रोटी बन जाए। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। व्यवस्था विवरण 8:4। जरा सोचिए कि 40 वर्षों तक एक ही वस्त्र पहनना और वो वस्त्र ना फटे, ना खराब हो और ना ही जंगलों में घूमने के कारण पांवों में सूजन आए, ये तो एक चमत्कार ही है। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। व्यवस्था विवरण 8:5। कुछ लोग परमेश्वर की ताड़ना को गलत मानते हैं। वे शिक्षा भी ऐसे ही देते हैं कि आपको परमेश्वर की ताड़ना की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अंगीकार करना है कि परमेश्वर आपकी ताड़ना ना करे। निस्संदेह धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी परमेश्वर ताड़ना नहीं करता है, आप स्वयं पढ़कर देखिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वहां गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। व्यवस्था विवरण 8:6-10 पद। हमें धन्यवाद का उत्सव मनाना है, परंतु चेतावनी, इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। व्यवस्था विवरण 8:11-14 पद। चेतावनी ये है कि राष्ट्रीय संकट उस समय नहीं आएगा जब उसका विजय अभियान चल रहा हो, उनका राष्ट्रीय विश्वास हो रहा हो, परंतु समृद्धि के समय, वही उनके इतिहास में सबसे अधिक संकट का समय होगा। ऐसा कब होगा? जब आप बलवंत हो जाओ, जब संपूर्ण प्रदेश तुम्हारे अधीन होगा, जब आप भोजन से तृप्त हो जाओगे, जब आपके पास धन संपदा होगी, तब परमेश्वर को भूल जाने का घोर संकट होगा। ऐसे समय में मनुष्य परमेश्वर को त्याग कर अपने ऊपर निर्भर रहता है। अब मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, परंतु आपको जब पैसों की आवश्यकता पड़े और आपका बैंक बंद हो तब क्या होगा? हमें अपनी धन संपदा में नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अन्यथा हम अपनी समृद्धि का कारण किसी और को समझ बैठे। मैं परिश्रमी था, मैं निष्ठावान था, मैं बहुत अच्छा मनुष्य था, इसलिए मुझे आशीष दी गई, और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी था कि मुझे यहां तक लाया। हम परमेश्वर की अद्भुत भलाई की अपेक्षा अपनी समृद्धि के दाता बन जाते हैं। हम परमेश्वर के स्थान पर अपना महिमावन करने लगते हैं। अतः परमेश्वर उनसे कहता है वे सावधान रहे, अन्यथा समृद्धि के कारण वे परमेश्वर को भूलकर अन्य देवताओं के पीछे हो लेंगे, जैसे आज मनुष्य भौतिकवाद के देवता का उपासक बन चुका है। यदि तू परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था विवरण 8:19 पद। परमेश्वर ने उनसे स्पष्ट कर दिया था यदि वे अन्य देवताओं के पीछे गए तो निस्संदेह नाश किए जाएंगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सन्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था विवरण 8:20 पद। 120 वर्षीय मूसा इसराइल के वंशजों से कहता है कि अब उसके प्रस्थान का समय आ गया है और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे और उस पर अधिकार करेंगे, परंतु वो उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि वो यर्दन पार नहीं करेगा। अतः वो उन्हें अंतिम संदेश देता है जिसमें वह उन्हें उनका कर्तव्य समझाता है तथा उन्हें चेतावनियां देता है। अब आगे यहोशु उनकी अगुवाई का उत्तरदायित्व संभालेगा और उन्हें यर्दन पार ले जाकर उस देश में बसाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। यही कारण है कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उन लोगों के जीवन की अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है। आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने आपको चेतावनी नहीं दी, क्योंकि इस पुस्तक में सारी चेतावनियां दी गई है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वो पहले से ही चिता देता है। उसने तो सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है कि ठोकर के पत्थर कहां कहां हैं। परमेश्वर ने चेतावनियां दी हुई है और ठोकर के कारण भी स्पष्ट किए हुए हैं। हमारा अगला अध्ययन अध्याय 9 से 16 तक का होगा। तेरा विश्वास योग्यता महान है, हे मेरे पिता, तू अपने वचन, अपने लोगों, अपने भविष्यत वक्ताओं के प्रति विश्वास योग्य ठहरा है। यदि आप भी उसकी धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो आप प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। वो आपके चारों ओर उस हवा की तरह है जिसे आप सूंघते हैं। ओह कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे, उसका अनुसरण करे और उसकी इच्छा का पालन करने के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे कि परमेश्वर को मन भावन लगे। ये हमारा समर्पण है। ओह परमेश्वर, मेरा जीवन कहने और करने में तुझे पसंद हो। मेरे मुंह की वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। भजन संहिता 19:14। मेरे लेटने में, बैठने में, मेरे हरेक काम को करने में परमेश्वर की उपस्थिति का मुझे बोध होता रहे और मैं परमेश्वर के विषय, उसकी विधियों के विषय, उसकी भलाई के विषय, उसकी धार्मिकता के विषय चर्चा करता रहूं, कि उसकी उपस्थिति बोध में जीवन व्यतीत करूं और इस प्रकार उसे प्रसन्न करूं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे और आपको मसीह यीशु के माध्यम से अपने प्रेमी अनुग्रह में उपस्थित रखें।